ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञान ते कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। We welcome all the devotees for our this month's Parivartan festival. Sabhi bhaktonga swagat hai is mahine ke Parivartan utsav mein. Hali mein is shishu ko naya naam mila hai. Do mahina ye shishu ko ho gaya. Do mahine ka shishu. ये हमारा तीसरा महीना है जिसमें हम इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम, ये जो हम सेमिनार लेंगे और जो लिए हैं, ये विशेष रूप से हम जो साधना भक्ति में लगे हैं, हमारी साधना भक्ति को और पक्का बनाने के लिए। और यदि आपको लग रहा है कि आपकी साधना भक्ति पहले से बहुत पक्की है, तो आप प्रेरणा देने के लिए हम सबको आ सकते हैं कि हम कैसे आपकी तरह साधना को और पक्की बनाएं। सो आई एम प्लानिंग टू मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ बिकॉज द टॉपिक्स विच आई विल बी टेकिंग विच वी हैव टेकन ऑलरेडी देर आर सर्टन टर्म्स एंड सर्टन पॉइंट्स विच कैन बी एक्सप्लेन्ड इन दिस लैंग्वेज मोर फ्लुएंटली and more explicitly and expressively. तो यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप बीच में हाथ ऊपर कर सकते हैं, ये वन वे ट्रैफिक नहीं रहेगा। आप लोग बीच में हाथ ऊपर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये मुद्दा मुझे समझ में नहीं आया, तो हम उसे फिर हमारी लोकल लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। सो काइंडली बेयर विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश और अदर You would just name it English, just one language. How do you find this topic? Is it relevant? क्या ये हमारी साधना भक्ति के लिए उपयुक्त है? Being conscious of Krishna, हम International Society for Krishna Consciousness में हैं। अर्थात श्रील प्रभुपाद ने ये जो इस्कॉन का नामकरण किया, कृष्ण भावना, कृष्णा कॉन्शियसनेस, बहुत ही गहरा इसका अर्थ है। देयर इज अ वेरी डीप मीनिंग बिहाइंड बीइंग कृष्णा कॉन्शियस। समटाइम्स वी यूज इट वेरी कॉमनली द वर्ड डिवोटी ऑल्सो, that I am a devotee of ISKCON, I am a devotee of Krishna. Like one time there was one disciple of Prabhupada and he came to Srila Prabhupada with many complaints about other devotees. And he was saying, Prabhupada, you know this devotee did this to me, that devotee spoke this to me, and you know that devotee has always been doing that to me. And this new devotee, Prabhupada, Prabhupada stopped him and said, wait a minute, as of now there is only one devotee in ISKCON, that's me. You are all trying to be devotees. Aap log sab prayas kar rahe hain bhakt banne ka. To hum jab apni bhavna ko Bhagwan Sri Krishna mein lagane ka prayas karte hain, prayas kar rahe hain na Krishna bhavna bhavit hone ka, to bahut si adchane aati hain, bahut se avrodh, many obstacles, hurdles. और विशेष रूप से हम भौतिक संसार में भगवान श्री कृष्ण की भावना में रहना चाहते हैं, और वो भी भौतिक संसार में सत्युग में नहीं, कली, कलियुग में, जो कि चारों तरफ, अर्थात कलयुग में भक्ति करना, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की भावना में रहना, ये उसी के समान है जैसे आप या कोई समुद्र में, बीच समुद्र में है और रसगुल्ला खाने का प्रयास कर रहा है, चारों तरफ नमकीन पानी है और कोई भी लहर वो रसगुल्ले को नमकीन बना सकती है. Any tide can make that rasgulla turn salty. So imagine a situation of a struggling swimmer in a salty ocean trying to enjoy a sweet. तो हमारी स्थिति इस कलयुग में कुछ उसी प्रकार से, ये चारों तरफ जो नमकीन या खारा बोलेंगे, नमकीन नहीं, खारा, खारा समुद्र बोलते हैं ना, खारा पानी, तो ये जो खारा कलयुग का जो जल है हमारे चारों ओर है. और श्रील प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने लाके हमारे हथेली पे रसगुल्ला दे दिया, खाओ. परंतु हां, साथ में ये भी हमें सिखाया कि कैसे ये खारे जल से भी हम बचे, हमारे ऊपर है हम कैसे खारे जल से बच सकते हैं. तो कई बार हमारी भक्ति में हम देखते हैं कि वो रसगुल्ला जो है वो थोड़ा मीठा लगता है कई बार, और थोड़ा थोड़ा खारा भी लगता है. अनदर एग्जाम्पल, प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस इन कलियुगा इज लाइक ट्राइंग टू एंजॉय अ चॉकलेट. वी डोंट डू दैट, बट इट्स एन एग्जाम्पल. ट्राइंग टू एंजॉय अ चॉकलेट विद द रैपर ऑन. फाइव स्टार पहले आता था ना, फाइव स्टार, पता नहीं आजकल आता है क्या, अभी भी आता है फाइव स्टार चॉकलेट. तो फाइव स्टार चॉकलेट कोई हमको लाके दिया और बिना उसका रैपर खोले ऐसे ही चबाना चालू किया, तो क्या अनुभव रहेगा? आई वॉन्ट सम फीडबैक्स ना. टेस्टलेस, एब्सोल्युटली टेस्टलेस. बीच बीच में थोड़ा आएगा, बीच बीच में थोड़ा उसका मीठापन, हमें उसका स्वाद आता रहेगा, परंतु उसके साथ फिर इट बी वेरी टूथ एक्सरसाइज, कॉल्ड टूथ एक्सरसाइज, वो हमारे दांतों के लिए एक्सरसाइज रहेगा. इट बी अ वेरी मिजरेबल ईटिंग. तो हम बोलेंगे थूक देंगे कई बार उसको. गलती किसकी है, चॉकलेट की कि रैपर की? या तो रैपर दो या चॉकलेट दो, गलती हमारी है अच्छी से वो रैपर को निकालना है. तो ये रैपर है क्या? हमारे अनर्थ, दिस आर ऑल अवर कंडीशनिंग्स ओवर द स्वीट लव विच वी ऑल हैव विद इन. लाइक अभी चॉकलेट क्या हम सब खाए अच्छा लगता है, इसलिए वो एग्जांपल दे रहे हैं. आध्यात्मिक संसार में ये सब एग्जाम्पल नहीं दिए जाते. तो बींग कॉन्शियस ऑफ कृष्णा वाइल बींग कॉशियस ऑफ माया, ये हमारा सीसी क्लास आज का, कॉन्शियस एंड कॉशियस, ये दोनों हमको एक साथ करना है इस भौतिक संसार में, क्योंकि आध्यात्मिक संसार में ये नीचे वाली लाइन की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे माया ही नहीं है, ये महामाया ही नहीं, तो किसके विरुद्ध हम सावधान रहें। परंतु यहां पर हमारे ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए जब भौतिक संसार से कोई आध्यात्मिक संसार में जाता है तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे पलटन के साथ, करताल मृदंग पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ वेलकम करते हैं। क्योंकि एक तो बहुत रेयर फिनोमेना है कोई जाना उधर, कोई करोड़ों लाखों में कोई एक, कई जन्मों के बाद, ब्रह्मा जी के कई दिनों के बाद कोई एक पहुंचता है उधर, विरला, बिरला नहीं विरला। तो इसलिए और सब, और भगवान श्री कृष्ण देखे हैं क्या क्या, कितनी बार वो जब से उठ उठ के मेरा माला किया है उसने पूरा, कितनी बार भागम दौड़ करके लेक्चर में पहुंचा है, और कितना उसने बकेट भर भर के प्रसाद खाया है, तो सब भगवान देखे हैं। पूरा पूरा हमारा जीवन, भक्ति का जीवन, हमारा संघर्ष, हमारा पूरा स्ट्रगल वो देखे। इसलिए जब वो देखते हैं कि हाँ मेरा बच्चा आ गया, फाइनली आ गया, तो माँ बाप कितने खुश होते हैं, खोया हुआ बच्चा वापस आता है। तो इसलिए यहां पर भौतिक संसार में ये जानना आवश्यक है कि कैसे हम सावधान रहे। तो किसी के मन में प्रश्न उठेगा, आज क्या होने क्या वाला है, व्हाट आर वी अप टू, कि आज क्या हमें डराने वाले हैं ये माया देवी के बारे में, कुछ बहुत ही ऐसी गुह्य बातें जो आज तक हमने कभी सुनी ना हो, आर वी गोइंग टू बी फ्राइटेंड और इज इट गोइंग टू बी लाइक अ स्वीट एंजॉयबल कथा सेशन, इज इट गोइंग टू बी एन आउटिंग इन अ पार्क और सर्जरी इन ऑपरेशन थिएटर। तो ये प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है। देखिए, हम सब स्वाभाविक रूप से चौकन्ना रहते हैं, वी आर ऑल स्पॉन्टेनियसली वेरी कॉशियस, इवन अ स्मॉल चाइल्ड, वो कुछ भी, कोई मच्छर भी बैठे तो तुरंत हमारा हाथ जाता है वो उसे भगाने के लिए, एक छोटा सा बच्चा भी वो अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत कुछ ना कुछ करता है, उसे कुछ ज्ञान नहीं कि क्या खतरा आया है, रिफ्लेक्स एक्शन जिसको बोलते हैं, हमारे अंदर सबके अंदर ये रिफ्लेक्स एक्शन है, कोई भी खतरा आए, जैसे हमारे डॉक्टर साहब को यदि हम पूछे तो हमारे अंदर एक डिफेंस सिस्टम है ना, एवरी बॉडी हैज अ डिफेंस सिस्टम, जैसे ही कोई कीड़ा या वायरस या बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रहार करने का प्रयास करता है, तुरंत हमारे अंदर का डिफेंस सिस्टम उसे बाहर फेंक, जैसे कि एक उदाहरण, गले में यदि कुछ फॉरेन एलिमेंट या आंख में कुछ फॉरेन एलिमेंट चले जाए, तुरंत हमारी आंख फड़फड़ाने लगती है, गला खांसने लगता है उसे बाहर निकालने के लिए, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो प्रश्न है कि क्या हम भक्ति में वो रिफ्लेक्स एक्शन यूज करते हैं क्या, जब माया का अटैक होता है, जब माया जो हमारे भक्ति के लिए फॉरेन एलिमेंट डालती है, तभी हम खांस के उसको बाहर निकालते हैं क्या, या उसे प्रेम से अंदर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत करेंगे एक सुंदर फोटो से। ये हाल ही में पुणे में एक शादी हुई, स्वाइन फ्लू मैरिज इन पुणे। तो यहां पे देखिए कितने सावधान हैं ये लोग, अभी कोई ऐसी फोटो अपनी खिंचाएगा, हाउ मच कॉशियस दे आर, इवन दो देयर इज अ वेरी फेस्टिवल इवेंट गोइंग ऑन, मैरिज, बट इन दैट कितनी सावधानी बरतने रहे ये लोग। तो मुझे ये फोटो जब मैं देखा तो बहुत इंस्पिरेशन मिला कि एक साधारण सा कोई वायरस, हालांकि वो साधारण नहीं, वो जानलेवा है, परंतु हम हमारे भौतिक शरीर के लिए कितना कॉशियस रहते। ये स्वाइन फ्लू के समय लोग कितना कॉशियस थे, कोई यदि 1 किलोमीटर दूर छींक दिया। अब हमारे जीवन में कितनी बार लोग छींके होंगे, हमारे पास आसपास हम खुद छींके होंगे, परंतु उस समय कोई छींकते ही, कोई खांसते ही तुरंत यहां पे ये वो सब सब डकैत दिख रहे थे सब जगह पे, होते ना वो डाकू मंगल सिंह जैसे बांध बूंद के। सो हियर इन व्हाट वी सी इज दैट हाउ मच कॉशियस समबडी इज फॉर दिस फिजिकल बॉडी, बट व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल बॉडी, द सोल? व्हाट आर द डिफरेंट मास्क वी शुड बी वेयरिंग? ये स्वाइन फ्लू वायरस तो कुछ नहीं है, माया देवी के पास तो ऐसे ऐसे वायरस है हमारी भक्ति को खत्म करने के लिए कि उसकी कोई गणना नहीं है कि कितने ऐसे वायरस माया देवी सब जगह फैला रखी है। यहां तक कि मंदिर में भी हम बैठे हैं तो माया देवी का प्रकोप मंदिर में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि जैसे हम स्वाभाविक रूप से अपने शरीर के लिए कितने सावधान रहते हैं, क्या बोलते हैं, सावध, मराठी में बोलते हैं सावध रहा, तो कितना हम सावध रहते हैं कि ये बीमार न हो जाए ये शरीर को कुछ चोट न पहुंच जाए, ये शरीर स्वस्थ रहे, क्या क्या अलग अलग प्रकार के तरीके से मैं शरीर को निरोगी रख पाऊं, क्या कुछ नहीं चल रहा है शरीर को निरोगी रखने के लिए। परंतु यदि आत्मा के विषय में पूछा जाए कि आत्मा जो इतने जन्म जन्मांतर से रोगग्रस्त है, इट इज क्रिटिकली इल द सोल, व्हाट आर वी डूइंग टू मेक इट हेल्दी, व्हाट आर द कॉशंस और प्रिकॉशंस विच वी आर टेकिंग? ये प्रश्न सबसे पहले, सेमिनार शुरू होने से पहले सबसे पहले ये प्रश्न उठना चाहिए कि क्या मैं वो सारी सावधानी बरत रहा हूं मेरे स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन के लिए, हेल्दी कृष्ण कॉन्शियस लाइफ। तो फिर हमारे प्रभु जी का प्रश्न है, क्या मैं इस जन्म में, इस कलयुग में, इस भौतिक संसार में शुद्ध भक्त बन सकता हूं? थोड़ा परेशान दिख रहे हैं ना, कई बार हमारा भी ऐसा प्रश्न होता है, 5-10 साल बाद 16 माला इतना किया, दीक्षा वगैरह भी हो गई, इतना लेक्चर सुना, इतना सुनाया, इतना प्रसाद खाया, इतना खिलाया, इतना सब होने के बाद फिर कई बार उसे बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, होता है ना, आपने सुना है मिड लाइफ क्राइसिस? तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी एक मिड लाइफ क्राइसिस आता है, एक स्टैग्नेंसी आ जाता है कि इससे ज्यादा क्या, क्या इससे ज्यादा, सारी लीलाएं सुन ली, सारे मंत्र आते हैं और जितने सारी कहानियां वो भी मुझे पता है, ये प्रभु जी जैसे कोई कहानी जो मालूम है क्या कहानी, कैलाशी मालूम है, कैलाशी कहानी 1000 बार सुनी, कैलाशी कहानी पूतना वधाज कितनी बार, 10,000 बार सुन लिया पूतना। तो फिर और उसके केवल ये नहीं, धीरे धीरे थोड़ा हमारा जो टेस्ट लेवल है वो नीचे जाता रहता है कई बार, और उसके ऊपर फिर माया देवी जो प्रलोभन देती रहती है, अरे कितने साल हो गए तुमने पिक्चर नहीं देखी, शर्म नहीं आती, पूरी दुनिया देखो आनंद लूट रही है, क्या फायदा तुम्हारे जीवन का, तुम्हारा जीवन कुछ फायदा नहीं। फिर हम भी गाना शुरू करते, आमार जीवन
किचु फायदा नहीं। क्या फायदा मेरे, कुछ मैंने भोग विलास कर नहीं पाया, यहां पर भी कुछ नहीं मिल रहा है, वहां पर भी कुछ नहीं मिल रहा है, धोबी का घर से भी निकाल दिया, घाट पे भी जगह नहीं मिली और घाट घाट पे घूम रहा हूं। तो ये प्रश्न, कैन आई रियली बिकम अ प्योर डिवोटी? तो इसके लिए आज हम जो मुद्दे चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले ये जो हम भौतिक संसार में हैं, ये किस प्रकार का भौतिक संसार है, इसका स्वरूप क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, नेचर ऑफ आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट प्योर डिवोटीज कृष्णा कॉन्शियसनेस, आवर कृष्णा, हमारे कृष्ण भक्ति का स्वरूप क्या है, ये भौतिक संसार का स्वरूप क्या है, और हम जो हमारे तरफ से हमारे कैपेसिटी में भक्ति कर रहे हैं, हमारी भक्ति का स्वरूप क्या है। और सबसे विशेष, क्योंकि हमें यदि कृष्ण भावना भावित होना है तो वो मन के द्वारा, माइंड प्लेज द की वाइटल रोल इन वी बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ कृष्ण एंड ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ माइंड। तो उसका स्वरूप क्या है ये मन का हमारे, और अंततः हाउ टू एक्सेस कृष्णाज मर्सी, कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा को कैसे हम ग्रहण कर सकें, हम जो भी हमारे परिवार में रहते हुए, व्यवसाय में रहते हुए कैसे उसको एक्सेस कर सकें। तो आज ये चार मुद्दे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस भौतिक संसार का स्वरूप, इसके लिए हालांकि हमने बहुत कुछ सुना है, अनुभव किया है, रह रहे हैं तो अनुभव किया है ना, खारे जल का अनुभव किया है, पी पी के हम और वो लहरों के दुत्कार खाते हुए हम बहुत कुछ अनुभव किए हैं इस भौतिक संसार के स्वरूप के बारे में, परंतु फिर भी भूल जाते हैं, है ना। तो यहां पर सबसे पहले आपको ये दो चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, आप क्या शिक्षा इससे लेते हो, व्हाट लेसन कैन यू एक्सट्रैक्ट बाय लुकिंग एट दीज टू इमेजेस, देयर इज लाइव वायर, द अदर इमेज इज लाइव वायर, जीवित वायर। केला खाना अच्छा है, फिसल जाएगा वो व्यक्ति, फिसलने वाला है, वो हाथ में माया को लिए, अरे बाप। ओके, सो फर्स्ट इमेज का एक रियलाइजेशन है कि वो व्यक्ति हाथ में माया को लिए है और आगे बस कुछ कदम आगे क्या है, केला, केवल केला, केले का छिलका, क्या करता है केले का छिलका, गिरा देता है। तो ठीक है, ये एक शिक्षा, और कोई डीप रियलाइजेशन, अननोन डेंजर एट एवरी स्टेप, कि पदम पदम यद विपदाम, ऐसी विपदा आ सकती है हर एक पद पर, और माया देवी जैसे हमारे प्रभु जी ने कहा कि अननोन डेंजर, यहां पर तो नोन है, दिख रहा है केले का छिलका, परंतु माया देवी ऐसे केले का छिलका फेंक सकती है जो दिखे भी ना, और जो केले का छिलका हो परंतु और किसी का छिलका दिखे, जैसे कि हम बद्रीनाथ जा रहे थे, तो ये 4-5 साल पहले की बात है, तो हमारे कुछ विद्यार्थी
विद्यार्थी अर्थात गृहस्थों के जो बच्चे उनके साथ गोविंद प्रभु में और थोड़े कुछ ब्रह्मचारी थे, तो वो एक व्यक्ति थोड़ा बहुत विनोदी व्यक्ति था वो विद्यार्थी, तो सबको केले दिए गए गाड़ी में, सबको खाने के लिए केले दिए गए। तो वो बस ड्राइवर वो बेचारा अपना चला रहा था, और वो बद्रीनाथ जाने के लिए बहुत चढ़ाई होती है ऊपर चढ़ने के लिए, थोड़ा ड्राइवर भी चौकन्ना और थोड़ा टेंशन में रहता है, क्योंकि अक्सर एक दो बसेस नीचे खाई में दिखती है गिरी हुई। तो क्या हुआ, सबने सब केला खा रहे थे, तो अभी भारत में केला खाने के बाद छिलका क्या बाहर फेंकते, तो एक लड़के ने छिलका बाहर फेंक दिया। तो यहां पर ये जो व्यक्ति, इसने जोर से चिल्लाया, बस फिसल जाएगी। वो बस ड्राइवर इतना डर गया, उधर ही ब्रेक मार के रोक दिया। अब देखो, केले का छिलका देखते ही हमारे मन में क्या ख्याल आता है, केला देखते खाने का, फिर उसका अलग अलग क्या, केले की सब्जी, केले के चिप्स, क्या बोलते हैं उसको, वो शिकरण, क्या शिकरण, वो सब ध्यान में आता है। परंतु छिलका देखते ही फिसली गाड़ी, फिसली। तो और दूसरा जो चित्र है, इसमें व्यक्ति अब खड़ा है, वो जो लाइव वायर, तो क्या समझ में आ रहा है यहां पर कि डेंजर एट एवरी, ये दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। कितनी बार सुने हम और कितनी बार फिसले भी हैं, कितनी बार शॉक भी लगा है वो लाइव वायर से, चटका खाए, परंतु फिर भी कुछ सालों बाद, हाँ उस समय जब फिसलते हैं तब अपने आप को हम चौकन्ना कर लेते हैं, फिर से कभी उसको टच नहीं करूंगा, फिर से जैसे ही केले का छिलका 10 किलोमीटर दूर से चलूंगा वहां से। परंतु थोड़े समय बाद जैसे कोई वो व्यक्ति व्यस्त है, तो हम ऐसे कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं कि फिर हमारा ध्यान हट जाता है कि माया देवी इस प्रकार की जो विपदाएं हैं वो हमारे सामने रखी है। तो इस समय आपको मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, 1 मिनट का है केवल, और इसको देखने के बाद फिर हालांकि हमें अपने आप को उस स्थिति में डालकर देखना है कि जब हम भक्ति में लगे रहते हैं तो हमारे साथ कई बार कुछ ऐसा होता है क्या, ये मैं आपका साक्षात्कार लेना चाहूंगा। फिर से देखना, तो कई बार हम भी जो हमारी भक्ति की गाड़ी बहुत प्रेम से चलाते रहते हैं और फिर माया देवी भेजती है, किसी विषय वस्तु को भेजती है, परंतु यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि माया देवी केवल विषय वस्तु को नहीं भेजती, वो दंडे को भी भेजती है उसके पीछे। तो हम वो दंडा भूल जाते हैं, वो जो दंडा मार पड़ी वो भूल जाते हैं,
परंतु विषय वस्तु ध्यान में रहती है। ऐसा अनुभव हुआ है? तो कई बार हम ऐसे वीडियो देख के बेचारा मार खाया, देखो कैसे है ना, बहुत बुरा। परंतु जब शुद्ध भक्त या भगवान हमको देखते ना ऊपर से, तो ऐसे ही देखते, हम अपनी भक्ति की गाड़ी चला रहे हैं और कई बार ऐसी मार पड़ती है। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि माया देवी वो प्रलोभन के साथ हमें शिक्षा भी दे रही है। हमें इस भौतिक संसार का स्वरूप इस प्रकार से समझना है। जब भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, तो ये भौतिक संसार का स्वरूप हमें इस प्रकार से समझना। भगवान दोनों बोले हैं, ये ही संस्पर्शजा भोग, कि भोग भी है। ऐसा नहीं कि संसार में भोग नहीं, नहीं तो सभी लोग आत्महत्या करने लग जाते। भोग है इसलिए तो जी रहे हैं सब लोग। परंतु दुख योनय एवते, उसके साथ उसी श्लोक में अगले लाइन में भगवान बोलते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, कि उसी भोग के साथ दुख। जैसे सिक्का, सिक्का होता है उसके दो साइड होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हेड और टेल्स, चित और पट, तो दोनों साइड होते हैं। तो यहां पर यदि हमें भगवान श्री कृष्ण की भावना में आना है, तो भगवान श्री कृष्ण जो इस भौतिक संसार का स्वरूप बताए हैं, उस भौतिक संसार के स्वरूप को हमें अपनी बुद्धि लगाकर समझना है कि कहां मैं बचूं और कहां इस भौतिक संसार का उपयोग करूं अपनी भक्ति के लिए। तो कई बार हमारा वो कैलकुलेशन गलत हो जाता है, वी मिस आउट दैट कैलकुलेशन, वेयर टू यूज मटीरियल एनर्जी फॉर अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस, वेयर टू अवॉइड। सो दैट इंटेलिजेंस वी हैव टू शार्पन, हमें हमारी वो बुद्धि तीक्ष्ण बनानी है। जैसे कि ये छोटे से क्लिपिंग में हमने देखा, और ऐसे हादसे हमारे साथ अक्सर होते रहते हैं हमारी भक्ति में, तो वो हादसों से हमें सीखते हुए कैसे हम अपने भक्ति को और परिपक्व बनाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब हमारा जो दूसरा मुद्दा था, मैं उस पर इतना गौर नहीं कर रहा, क्योंकि हम सब इतना अनुभव किए, इतना सुने हैं भौतिक संसार के स्वरूप के बारे में। तो हमारी जो कृष्ण भक्ति है, जो हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हम जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, वो जो शुद्ध भक्त, यहां तक कि गोपियां और मंजरियां जो आध्यात्मिक संसार में कृष्ण भक्ति करती हैं, वही हमें दिया गया है। अनार्पित चरिम चिरात, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको क्या दिया है, आध्यात्मिक संसार के जो शुद्ध भक्त भक्ति कर, जैसे कि ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये आध्यात्मिक संसार में शुद्ध भक्त इसका कीर्तन करते हैं। जैसे कि कल हम शरद पूर्णिमा मनाने वाले हैं और कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है, दामोदर अष्टकम, दामोदर लीला, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी, ये सब कुछ, ये सब आध्यात्मिक संसार में शुद्ध भक्त, और हमको ये सब कुछ अवसर दिया गया है। परंतु हमारी स्थिति क्या है कि वो चॉकलेट के साथ हमारा रैपर आ जाता है ऊपर, तो फिर वो कभी कभी थोड़ा स्वाद मिलता है उसका। तो हमारी कृष्ण भक्ति का स्वरूप क्या है, ये हमें जानना है। घबराइए मत, फोटो है केवल। तो अब थोड़ा मुश्किल होगा शायद यदि मैं प्रश्न पूछूं आपसे, आप क्या समझ रहे हैं अब इसमें, कुछ थोड़ा आपकी भक्ति को तीक्ष्ण, बुद्धि को थोड़ा और शार्पन करने के लिए। मुद्दा सेकंड पॉइंट हम पे आए, सेकंड पॉइंट पे आए हैं हम, नेचर ऑफ अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब हम भक्ति में नए नए आते हैं ना, तो हमारी इंद्रियों को ऐसे पकड़ के रखते हैं, जैसे वो सांप को कैसे पकड़े, ये पहले फोटो में, और फिर जब हम थोड़ा
सीनियर डिवोटी हो जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा माया से ऐसा खेलते हैं। जैसे वो दूसरी फोटो में वो सांप से खेल रहा है। तो हमारी कृष्ण भक्ति में इस प्रकार के ये स्तर आते हैं कि जब हम नए नए भक्ति में आते तो एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं। जैसे उसने एकदम जहां पर वो सांप काट सकता है वहां पर पकड़ के रखा, तो आपको क्या लगता है कौन सा व्यक्ति ज्यादा सुरक्षित है इसमें? पहला वाला ज्यादा सुरक्षित है ना, क्योंकि उसने कहां पकड़ के रखा है, जहां पर से सांप का सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है सांप का। तो जब हम नए नए भक्ति में आते हैं तो 16 माला मंगल आरती से पहले और कुछ साल बाद भी मंगल आरती से पहले, परंतु एक दो मंगल आरती बीतने के पहले, मतलब कल की मंगल आरती के पहले, और वो भी बोल सकते हैं मंगल आरती से पहले ही किया, कभी 12 बजे रात को मंगल आरती से पहले ही किया ना, परंतु वो मंगल आरती से पहले का जप। और जब हम नए नए भक्ति में आते हैं तो 4 नियम उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना, फिर ये यहां वहां का कुछ खाना नहीं, किधर भी जाते हैं तो इसमें क्या है, कहां से बनाए, किसने बनाए, 16 माला करता है कि नहीं, दीक्षा हुआ है कि नहीं, उसने भगवत गीता पढ़ा है कि नहीं, उसमें प्याज लहसुन है कि नहीं, ये नहीं वो नहीं, जितना हम लोग स्ट्रिक्ट रहते। और फिर कुछ साल बाद हम थोड़ा वो वहां से हमारा ग्रिप छोड़ के थोड़ा पीछे पकड़ते कि थोड़ा देखूं ये सांप कितना घूमता है, क्या कर सकता है ये सांप। सो देन वी ट्राई टू एक्सपेरिमेंट माया, हम फिर माया देवी को आजमाना शुरू करते हैं और फिर कई बार वो फुफकारना शुरू करता है, वो सर्प फुफकारना शुरू करता है। और कई बार हमें लगता है, कई भक्त बोलते हैं वहां मत पकड़ो, तो कई बार हमको भक्त बोलते हैं पिक्चर जाना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, यहां वहां जाना, ये सब फालतू की बातें, ये सब कम करो। हमको यहां वहां से आदेश मिलते हैं, परंतु फिर भी वो हर समय वो स्ट्रिक्टनेस बनाए रखना, क्योंकि क्या है कि हम 2400 घंटे भगवत सेवा में या भक्तों के संग में नहीं रह सकते, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो छोड़ दीजिए, परंतु शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अधिकांश हम रहते हैं ये सारे जो प्रलोभन है माया के उसके इर्द गिर्द। इसलिए हमें देखना चाहिए, ये हम थोड़े ऐसे फोटो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हम अगली बार जब भी थोड़ा भक्ति में ढीला हो तो समझ में आना चाहिए कि मैं सांप को कहां से पकड़ रहा हूं। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों की तुलना इस सर्प से की गई है कि इन इंद्रियों को कितना मैं कंट्रोल में रखा हूं। जैसे वो पहले फोटो में उसने कितना कंट्रोल में उसको रखा है, हालांकि दिखने में इतना खतरनाक, उस ये फोटो ऐसा है कि उसका विष भी दिख रहा है। यदि आप ध्यान से देखो, द पॉइजन इज ऑल्सो सीन, परंतु उसने ऐसी जगह पर पकड़ा है कि कुछ नहीं होगा। एंड स्लोली बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस, इफ वी होल्ड द सर्पेंट एट दैट प्लेस, we can take out all the poison, and then yes, pure devotees also play with the serpent like this, jaise bhagwan sri krishna kaliya jaise khunkar aur vishaila sarp kaun ho sakta hai, halanki bhagwan sri krishna ki to tulna hi nahi kar sakte hum, parantu yahan par hamari krishna bhakti ki ye jo do star hain, जब हम नए नए आते हैं और कुछ समय बाद जब थोड़ा ढीला पड़ते हैं तो कैसे हम माया को आजमाना शुरू करते हैं। सो वी शुड बी केयरफुल, अंडरस्टैंड इट्स लाइक पॉइजनस स्नेक।
We should not make the mistake of playing with that. Ajamil tried that. और क्या हुआ अजामिल के जीवन में? यमदूत जब तक नहीं देखे तब तक फिर वो अपने सेंसेस पे नहीं आया कि क्या गलती उसने की थी. सो दिस इज द नेचर. भागवत में एक सुंदर उदाहरण दिया है कि हमारा जो मन है, जब हम उसको नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं और इंद्रियों को, तो किसके समान है? जैसे कि एक शेर को पिंजड़े में किसी ने बंद किया. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मान लो कि आपने एक शेर को पिंजड़े में बंद किया है, तो आप क्या क्या सावधानी बरतेंगे या आपका विचार क्या होगा उस शेर को पिंजड़े में बंद देख? What will be your feelings when you see a tiger encaged? प्राण गौरांग प्रभु, लॉक अच्छी से किया है कि नहीं? और किसी और के पास डुप्लीकेट चाबी तो नहीं है ना? हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि वो पिंजड़ा बराबर लॉक किया है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है. और हाँ, वी फील रिलैक्स कि अंदर है, बाहर नहीं. हमको ये एक तसल्ली मिलेगी. हाँ, मतलब इसमें हम जैसे हमारे प्रभु जी बोले कि उसमें एक ऐसी भी फीलिंग है, पॉजिटिव फीलिंग है कि अच्छा लग रहा है, और यहां पे थोड़ा एक नेगेटिव फीलिंग है कि पिंजड़ा स्ट्रांग है कि नहीं. तो ये दोनों मिक्स्ड फीलिंग्स आ रहे हैं कि नहीं? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, अर्थात कॉशियस और कॉन्शियस, ये दोनों फीलिंग्स आ रहे हैं ना. तो श्रीमद् भागवत में और कोई किसी के साक्षात्कार, कोई जाके जप करना चाहेगा 16 माला बैठ के सर्कल में शेर के साथ? तो यहां पर हमें यह समझ में आ रहा है, या भागवत में भी ये कहा गया है कि जब हम मन को नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं तो उतना चौकन्ना सावधान हमें होना चाहिए जैसे कि कोई व्यक्ति जब शेर को बंद करता है तो कितना सावधान रहता है, क्योंकि वो शेर ने देखा है कि इसने मुझे बंद किया है. यदि गलती से भी वो पिंजड़े से बाहर आ गया तो सबसे पहले उसी को मारेगा वो. तो ये मन को हम जितना फ्री छोड़े हैं ना अब तक, और अब भक्ति में लाने के बाद ये मन को ये नहीं वो नहीं, यहां नहीं देखना, ये नहीं खाना, वो नहीं सुनना, ये सब नहीं 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 बोल बोल के ये मन वो खूंखार शेर के समान पिंजड़े में बंद है, वो घुर्रा रहा है और उसको हम कुछ खाना नहीं डाल रहे. तो ये सर्कस में ये शेर को कैसे पालतू बनाया जाता है? यू नो हाउ these ferocious tigers are tamed? कोई जानता है कैसे उसको वो लोग टेम करते हैं? उसको भूखा रखते हैं, वो चिल्लाता है उसको, जैसे गौर गोपाल प्रभु बता रहे थे वो दो कुत्ते, तो वो बुरे कुत्ते को हर समय एकादशी कराओ, वो भी निर्जल. तो वो जब बहुत चिल्लाता है, शुरू में बहुत चिल्लाता है वो शेर, उसको कुछ खाना नहीं देना, और वो जो रिंग मास्टर होता है वो क्या करता है? निग्लेक्ट, उसकी तरफ देखता भी नहीं हो. तो भागवत में ये मन के बारे में ये भी कहा गया है, निग्लेक्ट. तो जब उसको उसके प्रति दुर्लक्षता, इग्नोर, निग्लेक्ट, तो होता क्या है कि धीरे धीरे कितना चिल्लाएगा, कितने समय तक चिल्लाएगा, तो धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होती चिल्लाने की. तो ये मन भी ऐसे ही है, धीरे धीरे ये मन की शक्ति कम होती है चिल्लाने की. इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड पावर टू रोर And therefore, slowly, when that ringmaster gives anything to eat, the tiger becomes very obliged.
अरे तुमने मेरे को खाने को दिया 10 दिन बाद, कुछ भी दो, अरे पालक भी चलेगा.
शेर, वो पालक भी चलेगा, पालक का पकोड़ा भी चलेगा.
तो ये मन हमारा, हमारी कृष्ण भक्ति में हम जो लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको जितना हम इंद्रिय भोग कम दें उतनी इसकी शक्ति कम होती है.
और फिर जब हम कृष्ण भक्ति में थोड़ा भी इसको इंद्रिय भोग देते हैं, चलो आज तुम्हारे लिए संडे फीस्ट,
संडे फीस्ट, वाह,
फिर ये मन क्या करता है, धीरे धीरे ये मन यही बोलता है फिर हमको, अरे वो पिछले संडे को जो फीस्ट खिलाया था वापस खिलाओ ना. फिर ये नहीं बोलता है कि ताज होटल में लेके जाओ ना,
नहीं,
जैसे कि वो शेर फिर उस व्यक्ति के प्रति अपनी सहानुभूति और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड दिखाता है, वो मन उसी प्रकार से हो जाता है. परंतु वो जो फेज है उसमें हमको सावधान बहुत रहना है कि यदि वो फालतू बनने से पहले छूट जाए तो हम फालतू हो जाएंगे फिर.
अब यहां पर ये जो दो चित्र हैं, ये बहुत सोच समझ के मैंने टाइम लगा के चित्र ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं.
तो इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको ये दोनों चित्रों से?
बच्चे,
हाँ, तो एक जो बच्चा है उसको ठीक से पकड़ा हुआ है और एक बच्चे को सावधानी से नहीं पकड़ा. तो क्या देख रहे हैं दोनों के चेहरे पे बच्चों के? एक एकदम सुकून से उसके गोद में है और दूसरा बेचारा त्रस्त है.
तो कई बार हमारी भक्ति भी ऐसी बच्चे की तरह नहीं होती क्या?
कई बार हम देखते हैं हमारी भक्ति एकदम शांत सुकून तरीके से सो रही है. इसका अर्थ ये नहीं कि जब हमको जप में और श्रवण में नींद आती है तो वो बच्चे के समान है. और कई बार हमारी भक्ति वो दूसरे बच्चे के समान, जब ठीक से नहीं पकड़ो तो समझ में कैसे आता है कि ठीक से नहीं पकड़ा है? जैसे कई बार, अभी मुझे बच्चे पकड़ने की आदत नहीं, तो कई बार लोग बच्चे लाके प्रभु जी इसको आशीर्वाद दीजिए, तो वो लेते क्या है क्या है क्या है शुरू करते, मतलब पकड़ो भाई ये हमसे नहीं जमेगा इसको पकड़ने. और मेरे को पहले से बच्चों को हाथ में लेना बहुत डर लगता है क्योंकि वो हाथ पैर मारते रहते, उनको क्या पता, वो इतना हाथ पैर मारते रहते हैं, गिर गया कोई नीचे तो फिर. तो जैसे, ये उदाहरण इसलिए दिया गया है कि जैसे कोई बहुत ही छोटा सा नवजात शिशु, उसको हम कितना सावधानी से हैंडल करते हैं ना. माताएं वो जानती होंगी कि कैसे छोटे से शिशु को कितनी सावधानी से हैंडल करना पड़ता. तो यहां पर हमारी कृष्ण भक्ति का स्वरूप, हम उस पॉइंट पे हैं यदि आपको याद है, हमारी कृष्ण भक्ति का स्वरूप यहां पर बताया गया है. कृष्ण कॉन्शियसनेस इज फ्रेजाइल, हैंडल विथ नॉट केयर प्रेयर. वो लिखते ना बॉक्स के ऊपर लिखते ना, फ्रेजाइल हैंडल विथ केयर, यहां पे हैंडल विथ प्रेयर. और हमारा प्रेयर कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो यहां पर कृष्ण, हमारी कृष्ण भक्ति का एक स्वरूप क्या समझ में आ रहा है कि बहुत डेलिकेट है हमारी कृष्ण भक्ति. जैसे कि छोटा बच्चा, थोड़ा भी कुछ छोटे बच्चे को सावधानी से नहीं उसको पकड़ा गया तो कुछ भी उसका फ्रैक्चर हो सकता है, कोई बहुत सीरियस कुछ उसको तकलीफ हो सकती है. तो वैसे हमारी कृष्ण भक्ति वो नवजात शिशु के समान। तो सबसे पहला स्वरूप हमारे कृष्ण भक्ति का क्या है? डेलिकेट इन नेचर। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी कृष्ण भक्ति फ्रजाइल है, डेलिकेट है। परंतु शुद्ध भक्त जो होते हैं उनकी कृष्ण भक्ति ऐसे के समान है, ऐसे बच्चे के समान। अब यहां पे बच्चे को देखकर क्या समझ में आ रहा है? बच्चा है लेकिन वो जो कार्य दिखा रहा है करते हुए, वो जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति भी नहीं करता शायद ऐसा। तो इसलिए इसको ये टर्म दिया है डेलिकेटली टफ। क्या समझ में आया आपको? थोड़ा मुश्किल जा रहा है। डेलिकेटली टफ, थोड़ा टफ है हिंदी में अनुवाद करना, इसलिए इंग्लिश में बोल रहा हूं। पहले की स्लाइड से और ये स्लाइड से कुछ आपको समानताएं या विरोधाभास या कुछ समझ में आ रहा है? जैसे शुद्ध भक्त जो होते हैं उनकी भक्ति भी बहुत मृदु होती है, डेलिकेट होती है। तो वो शिशु के समान है। जैसे ये शिशु है परंतु इसके कार्यों से क्या लग रहा है कि मैच्योर्ड बेबी लग रहा है ना। द बेबी लुक्स मैच्योर्ड, द बेबी लुक्स एज इफ द बेबी कैन हैंडल इटसेल्फ। तो कई बार हमारी भक्ति वो जो डेलिकेट नाजुक स्थिति से वो भक्ति इस स्थिति तक आनी चाहिए कि भक्ति की मृदुता बनी रहे परंतु उसके साथ वो मैच्योर हो भक्ति। वी डोंट वॉन्ट टू मेक अवर भक्ति टफ लाइक इंपर्सनलिस्ट, ड्राई, जो मायावादी ब्रह्मवादी होते हैं, जो भगवान के वो जो इमोशनल साइड है भक्ति का, भक्ति में इमोशंस होने चाहिए, बिना इमोशंस के हम, तो वो इमोशनल साइड जो भक्ति का है वो जो बच्चे का डेलिकेट साइड है उसकी चर्चा यहां पे की गई। और जो मैच्योर इमोशनल अप्रोच होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति, जैसे कि वल्लभाचार्य इनके पास दो व्यक्ति आए उनके आश्रम में ज्वाइन करने के लिए, फुल टाइम ज्वाइन करने के लिए। तो एक व्यक्ति ने अपना परिचय दिया कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, मैंने बचपन से लेकर अब तक का मेरा जीवन पाप रहित जीवन जिया है, मैंने बहुत तपस्या भी अपने आज अभी तक के जीवन में की है, शुद्ध जीवन, पाप रहित जीवन, बहुत से ग्रंथों का अध्ययन, ये सब कुछ, और बिल्कुल भी मेरी पत्नी हाल ही में गुजर गई, एक आंसू नहीं आया मेरे आंखों से। तो दूसरा व्यक्ति उसने कहा कि मेरी भी पत्नी छोड़कर गई परंतु मैं तो बहुत रोया और कोई चारा नहीं था इसलिए आ गया आपके पास, और मेरा जीवन इनके समान नहीं रहा है, मैंने तो बहुत प्रकार के पाप कर्म किए हैं और इंद्रिय भोग में भी बहुत लगा हूं। तो वल्लभाचार्य ने दूसरे व्यक्ति को कहा तुम योग्य हो ज्वाइन करने के लिए। क्यों? तो पहले वाले को, पहला वाला क्यों, मैंने क्या किया, मेरे को क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा अरे तुम एक अपने पत्नी के लिए रो नहीं सकते तो भगवान के लिए क्या रोगे? यू डोंट हैव एनी इमोशंस, सो इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक यू इनटू अ सॉफ्ट डिवोटी, यू आर हार्ड लाइक बैम्बू, कैन ओनली बी कट इनटू टू। और दूसरा व्यक्ति, उन्होंने कहा कि ये जो दूसरा है इसके अंदर पहले से किसी को प्रेम करने की, किसी के प्रति आसक्त होने की भावना है, मुझे केवल ऑब्जेक्ट चेंज करना है। ये अभी जो इतने काम वासना से पीड़ित है, मुझे केवल भगवान श्री कृष्ण वो ऑब्जेक्ट चेंज करना होगा। तो भक्ति में हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हर समय हम जो माया माया माया, ये माया देवी इतनी स्ट्रांग है, ये वो, तो उसमें हमारे जो इमोशंस हैं कृष्ण के प्रति वो नहीं मर जाने चाहिए कि हर समय ऐसे। कृष्ण कॉन्शियसनेस शुड नॉट बी लाइक अ हॉरर मूवी, ऐसे डरते हुए भक्ति करो। उसमें हमें रस लेते हुए भक्ति करनी, तब जाकर हम वो भगवान श्री कृष्ण का जो अंश है प्रेम का, उसका आस्वादन कर पाएंगे। तो इसलिए ये एक बहुत ही सूक्ष्म मुद्दा है, हाउ टू बी डेलिकेटली टफ। इसके साथ ये भी नहीं होना चाहिए कि हाँ अब माया देवी कुछ भी करे तो क्या, इमोशंस बोला है ना, अभी इमोशंस होना चाहिए तो भी ठीक है, नहीं। वहां पर हमको जैसे चैतन्य महाप्रभु जब भी, जैसे प्रताप रुद्र महाराज से मिलने की बात हुई तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं एक राजा से क्यों मिलूं, एक विषयी व्यक्ति है वो, जो केवल धन दौलत और इसमें ही अपना जीवन बिता रहा है, मैं क्यों। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना वो स्ट्रांग साइड भी दिखाया, और उसके साथ चैतन्य महाप्रभु ने जो अपना सॉफ्ट साइड दिखाया, उसकी कितनी सारी लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की। कि चैतन्य महाप्रभु ने जब एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हुआ हुआ था, ऐसे कोड रोग, उस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करके कृष्ण प्रेम दिया, जानवरों को, शेर को, भालुओं को कृष्ण प्रेम दिया, ऐसी उन्होंने वो स्फूर्ति जागृत की भक्ति की। तो इसलिए हमारे भक्ति में हमारा कृष्ण भक्ति का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए, डेलिकेटली टफ। माया के लिए हमारा टफ साइड भी होना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण के लिए वो डेलिकेट साइड बच्चे का। और यहां पर एक और स्वरूप बताया गया है हमारी कृष्ण भक्ति का, कि हमें हमारी कृष्ण भक्ति को हैंडल कैसे करना है। जस्ट लाइक समबडी हैंडल्स अ वैल्यूएबल डायमंड, कि हमें हमारी कृष्ण भक्ति का मूल्य जानना है। और कृष्ण भक्ति का मूल्य कब जानेंगे हम, जितना हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करेंगे। कि मैं जिसका जप कर रहा हूं, जिस व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूं इतना रोज, वो व्यक्ति की महिमा क्या है, व्हाट आर द ग्लोरीज ऑफ दिस पर्सन हुम आई एम सरेंडरिंग माई लाइफ टू, तब जाकर उसका वैल्यू समझ में आएगा। एंड देन वी विल हैंडल अवर कृष्ण भक्ति जस्ट लाइक समबडी हैंडल्स। जैसे कि रूप गोस्वामी एक सुंदर उदाहरण देते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है रूप गोस्वामी का। रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि हमारा जप कैसा होना चाहिए, हाउ शुड बी अवर चैंटिंग। जैसे कि एक कंजूस व्यापारी दिन के गल्ला बंद करने के बाद, दुकान बंद करने के बाद, वो जब नोट गिनता है ना, कितने ध्यान से गिनता है वो नोट। कई बार हम भी अनुभव किए कि हम जब गड्डी पूरी 100 की या 500 की, 1000 की यदि गिन रहे हैं, और बीच में कोई आए, कैसा आज का मौसम, कैसा है, भाड़ में क्या मौसम, 50 51 52 53 बोला, और क्या आज खाने में क्या खाया, बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, वो केवल उसमें उसके काउंटिंग में कितना ध्यान रहता है। रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, हमारा जप वैसा होना चाहिए, हमारा जप वैसा होना चाहिए कि जैसे एक कंजूस व्यापारी अपना धन गिनता है, उस प्रकार से हमें अपनी माला गिननी चाहिए। बीच में कोई भी आए तो हमें यह लगना चाहिए कि जैसे वो फिर से शुरू करता ना, क्या डिस्टर्ब कर दिया फिर से, तो एक नोट और ऐसे ऐसे कर करके देखते रहते ना नोट, दो तो नहीं, ये तो नहीं हुआ, दो हुआ तो अच्छा है। तो ऐसे हमें माला में देखना चाहिए कि एक साथ तीन चार तो नहीं फेर लिए। तो कई बार हमको हमको एडवांसमेंट क्या लगता है भक्ति में, पहले मेरे को माला में 10 मिनट लगता था, अभी 4 मिनट पे पूरी कर देता हूं, तो हमको लगता है बहुत प्रगति कर ली हमने भक्ति में। तो हो सकता है कि 3-4 मणि वो कहां जा रहे हैं पता नहीं। तो रूप गोस्वामी के अनुसार जब हम हमारी कृष्ण भक्ति का मूल्य पहचानेंगे, तो मूल्य पहचानने के बाद हम उस कृष्ण भक्ति को कैसे हैंडल करेंगे, जैसे कि एक व्यक्ति किसी बहुत ही कीमती बहुमूल्य हीरे को कैसे हैंडल करता है। अच्छा, ये एक और स्थिति यदि आपने देखी हो, क्या हो रहा है यहां पर, अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। देखा वो मेले में लकड़ी लेके चलते, तो वो जो कल्पना कीजिए कि हमको लकड़ी देके खड़ा कर दिया उस पे, रस्सी पे, तो आपके मन में क्या क्या अलग अलग प्रकार की भावनाएं आएंगी। अब जैसे यहां पे जो पॉइंट बताया गया है, कॉन्शियस ऑफ बीइंग कॉशियस, कि आपको चलना भी है और उसके साथ आपको सावधान भी रहना है कि कहीं गिर ना जाओ। जैसे एक एक व्यक्ति था, उसका नाम था मिस्टर ब्लॉन्डिन। ये व्यक्ति, आप यदि नायगरा फॉल्स के बारे में सुने, नायगरा फॉल्स कनाडा में, नायगरा फॉल्स, ये नायगरा फॉल्स विश्व का सबसे बड़ा पानी का झरना बताया गया है। और ये व्यक्ति ने ऐसा खिताब हासिल किया कि इस प्रकार से ये वो नायगरा फॉल से यहां से वहां चल कर जाता था और वो पूरे अमेरिका देखती थी। तो इसने ये हुनर अपने अंदर पैदा कर लिया कि ये चल के भी जाता था और वो जो व्हीलचेयर होती है, व्हीलचेयर भी लेके, किसी व्यक्ति को बिठा के व्हीलचेयर लेके ना, क्या बोलते हो, बोरी में रेती भर के वो सब लेके चल सकता था। तो इसका गिनेस बुक में नाम आया, किस लिए पता है आपको, वो नायगरा फॉल्स में इसने रस्सी ऐसी बांधी और वो चल रहा था और इसके पीछे बड़ा बैकपैक था, तो बीच में जब पहुंचा, अब वहां पर जहां चारों तरफ पानी और इतना नीचे खाई, बीच में पहुंचा तो उसने वो बैकपैक निकाला, वो रस्सी पे है अभी, वो ये ध्यान में रखना, वो भूलना मत, रस्सी पे अभी वो, इस प्रकार से जो चित्र देख, उसने वो बैकपैक निकाला, उसमें से एक स्टोव निकाला, स्टोव वो अग्नि का कुछ पकाने के लिए, और उसमें ऑमलेट बना के खाया। तो देखो, इतना सब किया किस लिए, अभी उधर ही बैठ के खाना ऑमलेट जरूरी था क्या? तो वो गिनेस बुक में आ गया, मिस्टर ब्लॉन्डिन कुक्ड एन ऑमलेट इन द मिडल ऑफ द टाइट रोप व्हिच वाज टाइड अक्रॉस द नायगरा फॉल्स ऑफ कनाडा। तो कई बार अभी लोगों के अंदर देखो स्किल क्या, लेकिन किसके लिए यूज कर रहे हो। तो कई बार हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि यदि मेरी भक्ति भी इसी प्रकार की है तो मैं क्या अपनी भक्ति का उद्देश्य रखा हूं, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ माय भक्ति। वो मैं टाइट रोप पे इतना सब कुछ दौड़ धूप करके, अपना बैलेंसिंग एक्ट करके कहां पहुंचना चाहता हूं, या केवल बीच में स्टोव निकाल के ऑमलेट खाना चाहता हूं। सो अवर गोल शुड बी वेरी क्लियर, that yes, there is so much of struggle, but what is the outcome of that struggle? क्या मेरा उद्देश्य, ध्येय क्या है मेरी भक्ति करने का? अब इसके साथ एक और उदाहरण, cautious of being conscious। अब यहां पर क्या हो रहा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं hurdle race। तो हर्डल रेस में कोई नीचे से जा सकता है? नीचे से नहीं जा सकता ना? जाना है ऊपर से। तो किसी ने हर्डल रेस किया है कभी? किसी का व्यक्तिगत अनुभव है हर्डल रेस का? हमने, मैंने किया, अभी कर रहे हैं ना, कृष्ण भक्ति में क्या है, हर्डल रेस ही तो है। तो ये हर्डल रेस में कौन सी चीज के बारे में व्यक्ति को कॉन्शियस होना चाहिए और कॉशियस होना चाहिए? देखा तो है ना, अभी तो देख रहे हैं ना। हाँ, हर्डल गिरना नहीं चाहिए, अर्थात उसको टच नहीं करना चाहिए। हर्डल को टच नहीं करना चाहिए, तो हर्डल को नीचे से भी जाके नहीं टच करूंगा मैं, ऊपर से जाना है, ऊपर से, साइड से भी नहीं जाना है, ऊपर से ही जाना है, ना तो नीचे से ना साइड से, वो हर्डल के ऊपर से जाना है और टच नहीं होना चाहिए। टच हुआ तो गिरा, तो फिर आपके मार्क्स कम, बस इतना ही। और क्या, और कुछ होना चाहिए उसके साथ? हाँ, वो तो खैर हो गया, वो पॉइंट वही पार करना है। और कुछ? स्पीड, स्पीड भी साथ साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर आराम से फुर्सत में एक एक करके ऐसा चढ़ के, उसके साथ उसका स्पीड भी होना चाहिए। तो हमारी भक्ति में भी ये दोनों चीज होनी चाहिए कि भक्ति की स्पीड भी बनी रहनी चाहिए और वो हर्डल जो है माया देवी इस रखी है उसको ट्रांसेंड करना है। ऊपर जाना मतलब उसको निकाल नहीं सकते साइड में, अरे बीच में आ रहा है, साइड में करो इसको। तो वो जो माया देवी हर्डल सामने रखेगी, वो हर्डल को पार करना है, परंतु पार कैसे करना है? बिना स्पर्श किए, बिना उसको गिराए, ट्रांसेंडिंग द प्रपोजल्स ऑफ माया। सो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज लाइक दिस हर्डल रेस। और हर्डल रेस यदि आप जानते हो तो उसमें कितना हर्डल्स किसने पार किया है उस पर उसको मार्क्स मिलता है। तो कृष्ण भक्ति में भी किसी व्यक्ति की प्रगति कृष्ण भक्ति में कैसे समझ में आती है? कि उसने कितने हर्डल्स पार किए हैं बिना उसको गिराए, स्पर्श किए। हाउ मच ही हैज ट्रांसेंडेड द हर्डल्स। तो कई बार हमको लगता है कि मेरी कृष्ण भक्ति में कोई हर्डल्स नहीं आ रहे, इट्स गोइंग माय वे। सो ऑलवेज वी थिंक माय वे इज अ हाईवे। नहीं, पांडव, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इन सब के जीवन में हम यदि देखें तो कितने सारे हर्डल्स, अड़चने आई और इनके वजह से इनकी प्रगति के मार्क्स इनको मिलते गए, उसमें बढ़ोतरी होती गई। तो कई बार हमें लगता है कि हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस शुड बी कंफर्टेबल, है ना? व्हाई कृष्ण इज नॉट मेकिंग माय कृष्ण कॉन्शियसनेस कंफर्टेबल? बट उसमें फिर हमको कोई मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, कंफर्टेबल कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो इन दिस मटीरियल वर्ल्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड द हर्डल्स आर ऑलरेडी लेड बाय माया देवी एंड कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के द्वारा और जो उन्होंने पद्धति दी है, जो विधि दी है, उसके द्वारा हमें स्ट्रांग बना रहे हैं हर्डल्स के ऊपर से कैसे कूदा जाए। और ये हर्डल्स का एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, एक बहुत फाइन पॉइंट है, ये हर्डल्स केवल इतना ही ऊंचा रहता है कि आप कूद सको। ये हर्डल्स कभी इतना बड़ा नहीं बनाएंगे कोई, तो फिर तो नीचे से जाएगा ना कोई। द हर्डल्स आर ऑफ अ सर्टन हाइट दैट समवन कैन जंप ओवर। जैसे मैं अभी विजयदशमी
हमारे जो यहाँ पे शाखा है राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, तो वो लोग मुझे बुलाए थे उनका दशहरा का उत्सव, तो वहां पे छोटे बच्चे उनके लिए कैसे देश की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे शस्त्रों का इस्तेमाल करें, कैसे ऐसी स्थिति में जब विकट परिस्थिति आ जाए तो कैसे आप अपने शारीरिक बल से शत्रु का संहार करें, तो वो छोटे बच्चों की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने ऐसे वो बांबू रखा था। तो एक छोटा सा बच्चा वो बांबू के नीचे से क्रॉल करके गया, जैसे वो डिफेंस में ट्रेनिंग होता है क्रॉल करके नीचे जाना। फिर सामने एक बांबू रखा था जलता हुआ, उसमें वो उन्होंने कपड़ा बांध के केरोसिन डाल के वो जलता हुआ पूरा बांबू। तो मैं देख रहा इसके नीचे से जाएगा कि ऊपर से जाएगा, जो इतना ही हाइट का था खाली, तो आराम से ऐसे पार करके जा रहा। तो उसमें कोई बहुत बहादुरी नहीं है, वो इतना सा हाइट जो रखा हुआ, पर जब उसको इतना रखते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ उसमें वो जलने की भी संभावना है, परंतु वो हाइट इतना रखा है कि पार भी वो कर सकता है। तो इसलिए भगवान हमारे सामने यदि कोई हर्डल रखते हैं तो उसका हाइट पूरा नाप के रखते हैं हमारे अनुसार। हर एक कृष्ण भक्त, हर एक साधक के सामने का हर्डल अलग साइज का होता है। जैसे पांडवों के सामने जो हर्डल, वो अगर हमारे सामने रख दें तो हम उधर ही हरे कृष्णा भगवान आप और आपकी भक्ति आपस रखो, आप अपने पास मैं चला। तो जो पांडवों के सामने हर्डल भगवान ने रखा वो उनके हाइट को देखते हुए, और हम जो छोटे से बच्चे हैं अभी हमारी हाइट को देखते हुए भगवान छोटा सा रखते हैं, लेकिन बिना हर्डल के नहीं कोई भगवत नाम पहुंच पाएगा। तो वो हर्डल इतना हाइट का रहता है कि पार भी कर सके, और यदि ध्यान न रहे तो स्पर्श भी हो जाएगा। ये दोनों है साइड होता है उसका। इफ यू आर नॉट केयरफुल वी मे टच दैट एंड मेक इट फॉल ऑल्सो, and if we are careful we can jump over it also. That is how Krishna consciousness should be consciously and cautiously handled like this. Ab hamara jo teesra point, hamare man ka swaroop, what is the nature of our mind? पतंजलि योग सूत्र के अनुसार हमारे मन के पांच अलग अलग स्तर बताए, 5 stages ऑफ अवर कॉन्शियस माइंड अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र। सबसे पहला बताया है मूढ़, ये एक स्टेज माइंड का है, जब एकदम हम पांचों आपको बता देंगे फिर इसका डिस्कस करेंगे हम। क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्रत, कॉन्सेंट्रेटेड, और पांचवा है निरुद्ध, प्योर ट्रांस। तो प्योर ट्रांस तक पहुंचना है, परंतु सबसे पहला स्तर क्या है? मूढ़। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार मन का ये सबसे पहला स्तर है। मूढ़ मतलब समझ गए ना, मूढ़ कि जैसे कि कोई व्यक्ति नशे में धुत, समझ में नहीं आता क्या दिन है या रात है, ये क्या है। एक कॉलेज का स्टूडेंट, वो सैटरडे पार्टी के लिए गया, तो मां ने पूछा कितने बजे आओगे, 10:30 बजे हो जाए, 10:30 बजे आ जाऊंगा, 10:30 बजे पार्टी शुरू होने वाली थी, तो झूठ बोला, 10:30 बजे आ जाऊंगा। तो मां वेट कर रही है, 10:30 हो गया, 11 हो गया, 11:30 हो गया, 12, 1, 1:30, 2, 2 बजे ये महाशय आते हैं पूरा धुत, 2-3 अंदर बॉटल डाल दी। तो ये थोड़ा डगमगाते हुए आए और देखे अभी तक मां जगी है, हाथ में झाड़ू है, तो बोलता है मां अभी तक झाड़ू लगा रही हो?
क्योंकि वो जब गया था सुबह सुबह तब देखा था माँ झाड़ू लगा रही थी, तो अभी तक झाड़ू लगा रही हूं माँ, 2 बजे रात के झाड़ू रखो ना। इसको बोलते मूड। तो ये एक माइंड का स्टेज रहता है कि वही वस्तुओं को हम देखते हैं परंतु मूड होने की वजह से हमें लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। फिर एजिटेटेड, जब व्यक्ति कुछ नियम पालन करना शुरू करता है, मूड व्यक्ति कोई नियम में पालन नहीं करता, परंतु मन जब किसी नियम को पालन करना शुरू करता है तो फिर उसमें एजिटेशन, उत्तेजित होना शुरू करता है वो मन, और फिर डिस्ट्रैक्टेड। ये सब अनुभव हो रहा है ना कि मुझे होता है खाली विक्षिप्त, विक्षेप, विक्षेप आता है उसमें कि जब हम भगवान के विषय में सुनने जाते हैं तो वो टर्न लेके गाड़ी और कहीं जाती है और कुछ सोचना शुरू करते हैं। और जहां पर मन को लगना चाहिए वहां पर मन बिल्कुल नहीं जाता अपने आप को लगाने के लिए, इसको बोलते हैं विक्षिप्त। फिर इससे ऊंचा स्टेज है एकाग्रता, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड आना, कॉन्सेंट्रेशन आना शुरू होता है। पहले 2 माला हम जगे रहते थे, अब कम से कम 14 माला जगे रहते हैं, 2 माला सोते हैं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। और अंततः निरुद्ध, प्योर ट्रांस, शुद्ध समाधि, ये स्तर। तो ये 5 स्टेजेस है हमारे कॉन्शियस माइंड के। अब यहां पर एक व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, कल्पना कीजिए, आप देखिए ये व्यक्ति अपने परिवार का फोटो खींच रहा है। दिस मैन इज टेकिंग अ फोटोग्राफ ऑफ हिज ओन फैमिली। तो ये व्यक्ति क्या बोल रहा है फोटोग्राफ लेने से पहले? सबसे पहले बोलता है, ऑन द लेफ्ट इज माई वाइफ, इन द मिडल इज माई मदर इन लॉ, बिसाइड हर इज माई सिस्टर, एंड ऑन द राइट इज माई सिस्टर इन लॉ। नो, आई बिलीव दैट द पर्सन इन द मिडल इज माई वाइफ, बिसाइड माई सिस्टर इन लॉ, एंड टू द राइट इज माई मदर इन लॉ, एंड लेफ्ट इज माई मदर। माई मेमोरी इज नॉट दैट गुड एनी मोर, आई डू नॉट नो इफ माई डॉटर वॉज विथ अस दैट डे। I believe that she could be the person on the right, but I am not sure. The only thing I am sure of is that my wife is in the middle. Maybe not. Damn. Damn it! This is troublesome. वो व्यक्ति सही था कि गलत था? तो कई बार होता क्या है कि हम भक्ति के बारे में इतने अलग अलग मुद्दे सुनते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मुद्दा, कभी हियरिंग ज्यादा करना चाहिए कि चैंटिंग ज्यादा करना चाहिए, प्रसाद ज्यादा खाना चाहिए कि निर्जल एकादशी ज्यादा करनी चाहिए, एकादशी उपाशी की दुप्पट खाशी क्या होना चाहिए। तो ये द्वंद्व, ये हर समय कंफ्यूजन, ये एक ही परिवार है, इसका उसी का परिवार है, उसमें उसको इतना कंफ्यूजन है। हालांकि अभी समझ में आ रहा है क्यों कंफ्यूजन। तो कई बार हमारे भी जो भक्ति के अलग अलग मुद्दे हैं फॉलो करने के, उसके ऊपर हम बुरका डाल के रखते हैं, है ना, उसके ऊपर बुरका डाल के फिर हम फैमिली फोटोग्राफ लेने जाते हैं तो हम भी कंफ्यूज हो जाते। अरे मैं भागवतम शुरू किया था 1996 में परीक्षित महाराज कर्स्ट, और 2009 में परीक्षित महाराज गोइंग बैक टू गॉड। क्या हुआ बीच में, क्या हुआ?
1996 से 2009 के बीच में अचानक परीक्षित महाराज भगवत नाम कैसे जा रहे हैं? तो कई बार हमारा वो थोड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। आई वुड लाइक टू हैव अ स्मॉल एक्सरसाइज जस्ट इन केस इफ वी आर नॉट अवेक। तो घबराइए, मैं स्नान करने नहीं जा रहा मैं। तो मुझे दो होनहार बहादुर भक्त चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए। कवेश, आई नो यू वेल, सो सॉरी। कवेश और मितेश कैसा रहेगा? अच्छा कॉम्बिनेशन है। दो ईश्वर, मितेश प्रभु। तो कवेश को क्या करना है कि हमारे मितेश प्रभु के आंख पे पट्टी बांधनी है। देखते हैं कैसे बांधते हैं पट्टी। पट्टी बांधने का उद्देश्य है कि उनको दिखाई नहीं देना चाहिए कुछ भी, और इतनी इतना कष्ट भी मत बांधना कि फिर दिखाई ना दे। कितना है अभी आपको मितेश प्रभु को वहां ले जाना है? लेके जाइए। आप विश्वास कीजिए, कवेश आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप इधर आ जाइए। सो कवेश, आई वॉन्ट नाउ दैट यू हैव टू गिव ओनली 5 इंस्ट्रक्शंस इन 2 मिनट्स। 5 इंस्ट्रक्शंस इन 2 मिनट्स एंड यू शुड make him touch this chair. And as he is giving instructions, somebody can give opposite instruction also somewhere. So Mitesh, aapko Kavesh ki awaaz ko pehchan kar, Kavesh jo instruction aapko dega, usko follow karte hue, कवेश जो चाहता है वो पूरा कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
मितेश प्रभु, टर्न लेफ्ट, टर्न टू योर लेफ्ट, वॉक स्ट्रेट।
दो इंस्ट्रक्शन हो गए आपके।
टर्न राइट स्ट्रेट।
ठीक है, एक ग्रेस ग्रेस दे देते हैं। शर्मा जी पीछे हैं। आपके 5 इंस्ट्रक्शन हो गए और आपका टाइम भी पूरा हो गया। अभी आप फिर से उनको लेके जाओ। नहीं, खोलना नहीं, फिर से लेके जाओ। हाँ, वो आप लोग को देने चाहिए थे। is a bhakta neither. Kavish, aajo. तो हम इस खेल को फिर से खेलते हैं। तो नियम क्या थे? 5 इंस्ट्रक्शंस और 1 मिनट। क्या करना है? ये चेयर, मितेश प्रभु को ये चेयर को इधर रखना है, ये चेयर को स्पर्श करना है। ठीक है, मैं ट्राई करूं? हाँ, आज्ञा है। My time, you say.
Your time starts now.
Mitesh Prabhu, सबसे पहले अपनी आंख की पट्टी खोलो। और ये कुर्सी को टच करो। Sorry. अरे टच करो। तो अभी आप लोगों को क्या इसमें समझ में आया? क्या साक्षात्कार आपका ये एक्सरसाइज से? यस, कवेश से पूछते। रॉन्ग एजम्पशंस, कि गलत अनुमान। हाँ, माइंडसेट, वी हैव अ सर्टन, मतलब आपके अनुसार माइंडसेट ये था कि जब बोला गया पांच इंस्ट्रक्शन, तो उसमें ये भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है ना, पट्टी खोलो। मैंने ये तो नहीं कहा था कि ये इंस्ट्रक्शन मत देना, मैंने खाली बोला था कि पांच इंस्ट्रक्शन कुछ भी दो आप, उसको यहां से यहां लाना है। तो एक हमारा एक माइंडसेट लेके हम भक्ति में आते हैं, ये यहां पे हम सीख लेते हैं। और कुछ? इंटेलिजेंस, वन शुड यूज इंटेलिजेंस विच इज वेरी सिंपल, द इंस्ट्रक्शंस आर वेरी सिंपल गिवन बाय लॉर्ड कृष्णा इन द गीता, इट्स वेरी सिंपल। बेसिकली यहां पे हम ये समझ रहे हैं कि कई बार हम जितने सारे इंस्ट्रक्शन सुनते हैं ना भक्ति में, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करना, इस समय करना, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, हमको लगता है कि ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं। और वो कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस हमको कब लगते हैं? यदि मैं मितेश से पूछूं, मितेश आपका क्या साक्षात्कार था, आप जब आंख में पट्टी बांधे हुए वहां से यहां आने का प्रयास कर रहे थे, व्हाट वॉज गोइंग ऑन इन योर माइंड, एक एसेंस में आप बताना चाहेंगे? डर, डर था, that was one overwhelming feeling, डर। और जब दूसरी बार जब आपको बोला गया, तब आपका क्या इमोशन था? although the obstacles were there, obstacles ये सब लोग उठे नहीं थे यहां से, ये वैसे ही थे, सारे कुर्सियों पे जमे हुए थे। So the same destination, the destination was the same, the distance was the same, the obstacles were the same. Only thing, you remove the blindfold, your fear emotion turns into fearless. अभी चलना, हम कई बार कितनी बार सोचते हैं कि चलना मुश्किल हो रहा है क्या, डर लगता है चलने में, लेकिन जब आंख में पट्टी बांधो तो वही एक कदम लेने में डर लगता है। So many times, our conditionings, our anarthas are like that blindfold. Krishna prem prapt karna itna asaan hai jaise Mitesh Prabhu yahan pahunche. It is as simple and as easy as this. But what makes it complicated? The instructions which are given in a complicated way, understood in a complicated way, with the blindfold on. Isliye, गीता का सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? तुम शरीर ही नहीं हो,
So it's like the first instruction which I gave, remove the blindfold. तो सारी समस्या ही चली गई ना. ये सारी समस्या हमारी होती क्यों है? हम शरीर मानते हैं अपने आप को, उसी से समस्या शुरू होती है. सो इट इज लाइक द वेरी बेसिक इंस्ट्रक्शन ऑफ गीता इज वी आर नॉट दिस बॉडी. हम ये शरीर नहीं है. ये केवल हम साक्षात्कार कर लेना, कुर्सी हमारी. आध्यात्मिक संसार में ये रिकामी कुर्सी है हमारी. खाली हमको वो पट्टी निकालनी, और बोला भी है भगवान ने, बोल भी दिया पट्टी निकालने के लिए. फिर भी कई बार हम बोले पट्टी कैसे निकाल दूं. इसलिए कई लोगों को लगता है ये कृष्ण भक्ति इतनी आसान कैसे हो सकती, थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए ना. जैसे हमारे धनंजय प्रभु एक सुंदर उदाहरण दे रहे थे अपने लेक्चर में कि कलयुग में जितना कॉम्प्लिकेटेड आप कुछ बनाओ उतना उसकी सराहना लोग करते हैं. तो उन्होंने उदाहरण दिया, आपने यदि आरओ सिस्टम देखा होगा हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए, एक अंदर आरओ सिस्टम लगा है, तो वो आरओ सिस्टम का अंदर जो भी मैकेनिज्म है उसके अंदर के पुर्जे वगैरह सब, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का केस किया है ताकि आप देख सके अंदर. अभी कोई भी मशीन को कोई व्यक्ति ऐसे ट्रांसपेरेंट तो कुछ नहीं लगाएगा ना कि अंदर का सब, वो दिखने में इतना अच्छा नहीं दिखता है. उसको अच्छा जैसा कोई ऐसा कवर लगाएगा कि बाहर का बॉडी अच्छी से दिखे खाली, और अंदर का जो भी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है वो ना दिखे. परंतु इन्होंने जानबूझ के अंदर के कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी के आगे ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा प्लास्टिक लगाया. क्यों? जब लोग देखते हैं ना तो लगता है इतना कॉम्प्लिकेटेड वाटर प्यूरिफायर है तो दाम होना ही चाहिए ना इसका, कितना कॉम्प्लिकेटेड बना, देखो क्या कहां से कहां जा रहा है. और होगा कुछ नहीं उसके अंदर, खाली रहेगा वो, कुछ तो खाली रहते हैं उसके अंदर. तो ये कलयुग का लक्षण है, जितना आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड करके. इसलिए अध्यात्म में भी इतना आसान कैसे हो सकता है, पट्टी खोलो और कुर्सी पे बैठो. हाउ कैन कृष्ण कॉन्शियसनेस बी सो सिंपल. हरिनाम करो और भगवत नाम, प्रसाद खाओ और भगवत, ये तो बहुत ज्यादा हो गया. प्रभुपाद बोले ईट योर वे बैक टू गॉड हेड, खाते पीते सोते जाओ. सोते तो नहीं बोले, फिर भी जा सकते. तो ये छोटा सा एक्सरसाइज हमको ध्यान में रखना चाहिए. जब भी हमारा माइंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू कर दे तो समझ में आना चाहिए कि मैं सिंपल इंस्ट्रक्शंस को कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं या अपने कॉम्प्लिकेशंस के वजह से उसको मैं कॉम्प्लेक्स देख रहा हूं. तो जस्ट रिमूव द ब्लाइंड फोल्ड ऑफ अवर कंडीशनिंग्स एंड कॉम्प्लिकेशंस एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कृष्ण कॉन्शियसनेस इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे. तो इससे ये समझ में आ रहा है हमको. अब एक और यहां पर आपके सामने एक, किसी को उठाएंगे नहीं हम, सिंपल सा एक एक्सरसाइज है कि ये जो हमारा मन है ये मन की शक्ति क्या है. ये हर बार हम मन को कोसते रहते हैं, ये मन ये वो और ये मन परंतु मन के बारे में भगवान कहे हैं मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय. ये मन ही हमारे उद्धार का कारण है और हां बंधन का भी कारण ये मन बन सकता है. तो ये माइंड का क्या पावर है इसको आजमाने के लिए आपके सामने एक अलग से एक वस्तु प्रस्तुत कर रहे हैं. दिस इज अ पैसेज रिटन इन इंग्लिश. तो मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति अभी जो सामने आएगा उसको हम सबको पढ़ के सुनाए. कैन वी हैव अ माइक विच वर्क्स. डे प्रभु वुड यू लाइक टू, वी हैव द माइक्रोफोन. ओके सी इट्स वर्किंग.
हेलो.
Kindly read this.
The phenomenal power of the human mind, according to a research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and the last letter to be in the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Amazing, huh? Till today, I always thought spelling was most important. So if you can read this, then know the power of the human mind.
Arriva! Thank you, Mr. Day. तो क्या समझ में आ रहा है इसमें कि हालांकि ये पूरा जंबल्डअप लिखा गया है और फिर भी हमारा मन, जैसे इन्होंने एक भी मिस्टेक किया नहीं इसमें, और हमारा इनका जो मन या हमारा भी, हम जो पढ़ रहे थे इनके साथ, आप लोग सब भी पढ़ रहे थे ना साथ में, तो अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें से आप सीखे इन रिलेशन विद द पावर ऑफ द माइंड एंड इन रिलेशन विथ वॉट वी आर डिस्कसिंग. यदि मन स्थिर है तो गलत चीज को भी हम सही समझ सकते हैं. हाँ, ओके, सो प्रैक्टिसिंग वी हैव प्रैक्टिस रीडिंग इट द राइट वे, बट इवन इफ समथिंग इज प्रेजेंटेड लाइक दिस बिकॉज ऑफ द प्रीवियस प्रैक्टिस द माइंड विल ऑलवेज हेल्प यू टू रीड इट इन द राइट वे इवन इफ इट इज प्रेजेंटेड इन अ रॉन्ग वे. एनी अदर पॉइंट्स, और कोई मुद्दे? Yeah, so we know the ultimate solution. Don't try to go into the nitty-gritties of the problems and understand that within that jumbled up problem is the solution. Jaise words jumbled up hai, parantu usi mein uska spelling hai. Yahan wahan se koi word bahar se nahi kuch dalna padega humko, aur koi nikalna bhi nahi padega. Wo sab letters usi word mein hai, alphabets hai. We just have to translate it according to our previous perfect practice of reading it right. तो इसमें यह समझ में आ रहा है कि हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि यदि उसमें हम सही इनपुट्स दें, तो यदि माया देवी कितना भी मैस हमारे सामने खड़ा करे, no matter how jumbled up life माया देवी presents, if our mind has practiced something in a right way, it will always read in a right way. That is the power of the mind. So don't underestimate the power of the mind. Even if sometimes we think that if some problem comes in front of me, which may appear to be beyond my handling capacity. No, the mind has power over matter. So the lips were moving as Mr. Day was reading out this. His lips were moving in the right way, although the thing was presented in a wrong way. Why? Because of the mind. The mind was reading it. So, was that something fruitful in regards to the human mind? Ab ekagrata, this point of concentration. Many times concentration is because of fear also. You are very concentrated when you are afraid of something. Jaise vidyarthi pariksha se pehle. पूरा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ता है, कल सुबह परीक्षा है, तब देखो उसका आपको अनुभव हुआ ना भक्ति शास्त्री से पहले कि जब 6 महीना पहले क्लासेस चालू हुए था, 6 महीने बाद है, लेकिन एग्जाम के एक रात पहले जो कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों का रहा होगा, हाँ, था कि सो गए थे, क्यों था? फियर. उसका कारण क्या था? बिकॉज ऑफ फियर. सो समटाइम्स एकाग्रता कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ फियर, बट दैट इज नॉट हेल्दी. सो समटाइम्स वी बिकम सीरियस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस जस्ट फियरिंग माया. But don't think that we are advanced. We have become a very concentrated devotee. Because it's a very low level of concentration. Just out of fear. And the other is out of anticipation. Kuch milega. So, koi vyakti jab kisi ki apeksha mein rehta hai, to bahut ekagrachit rehta hai. Jab hum kisi ki pratiksha mein hai, koi premi premika ke pratiksha mein hai, to bahut ekagrachit rehta hai. Anticipation. So there is concentration because of fear, concentration because of anticipation. But one has to go beyond this. And the last stage of the mind is called Niruddha, the purified. That's pure love. And pure love transforms into contemplative reality. When we talk about Krishna consciousness, there is a term called contemplative reality. This is a term from psychiatry. इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति इतने ध्यान में लगता है किसी के कि उस ध्यान को वो रियलिटी में परिणित कर देता है. दिस इज कॉल्ड कंटेम्पलेटिव रियलिटी. जैसे कि इसके कुछ उदाहरण हमारे शास्त्रों से जिससे हमें समझ में आएगा. गोदावरी ब्राह्मण यही क्या है? गोदावरी ब्राह्मण का उदाहरण कौन बोलेगा मुझे? खाली खीर बस और कुछ नहीं. गरम खीर. अच्छा क्या फिर गरम खीर क्या हुआ? गरम खीर क्या है? तो अब सूत्रों में बता रहे खीर गरम खीर क्या हुआ क्या? गरम खीर खाली उसने? गोदावरी के तट पर इस ब्राह्मण ने अपने मन में भगवान श्री नारायण को खीर अर्पित की और मन में इन्होंने सोचा कि खीर तो ठंडी अर्पित किए तो अच्छा रहता है. तो उन्होंने अपने ध्यान में अपने कंटेम्पलेशन में उंगली डाली खीर में, जलती हुई गर्म खीर में. उनकी उंगली रियलिटी में जली. इसको बोलते हैं कंटेम्पलेटिव रियलिटी कि उनका ध्यान इतना परिपक्व था, निरुद्ध स्टेज का था कि दैट एक्टिविटी टर्न्ड आउट टू बी रियल. सो देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन हिज कॉन्शियसनेस एंड द रियलिटी हैपनिंग. सो दैट इज द प्यूरिफाइड स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, बीइंग कृष्णा कॉन्शियस. नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी का उदाहरण है चैतन्य चरितामृत में. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर निकले अपनी यात्रा में. नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी वो बैठे हुए बंगाल में और वो ध्यान कर रहे हैं. चैतन्य महाप्रभु जब निकले हुए हैं अपनी यात्रा के लिए तो वो चैतन्य महाप्रभु के लिए रास्ता बना रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं अपने ध्यान में. और चैतन्य महाप्रभु वास्तविक रूप में जो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी ने रास्ता बनाया उस रास्ते पर चैतन्य महाप्रभु असलियत में चलने शुरू किए. और फिर नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी के ध्यान में उन्होंने यह देखा कि चैतन्य महाप्रभु कनाई नटशाला तक पहुंचे और उसके आगे वो नहीं जाने वाले. तो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी ने सब भक्तों को कहा चैतन्य महाप्रभु कनाई नटशाला के बाद वापस आ रहे, नहीं जा रहे बृंदा. सब बोले क्या अभी तो निकले वो? उनके ध्यान में उससे आगे उनका ध्यान नहीं जा रहा था. अभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जब सोलह माला बैठते हैं करने के लिए तो हम शुरू किए भगवान निकले गोलोक वृंदावन से नासिक की ओर द्वारका सर्कल तक पहुंचे और फिर हम सो जाते हैं तो हमको लगता है उसके आगे भगवान नहीं आएंगे. तो ये केवल नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी जैसे शुद्ध भक्त ही वो निरुद्ध स्टेज के कंटेम्पलेटिव रियलिटी तक पहुंच पाएंगे. और उदाहरण है प्रहलाद महाराज. क्या उदाहरण है इनका? प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप से कह दिया, हाँ ये तुम्हारे महल के खंभे में नरसिंह भगवान है, तो उनका जो कंटेम्पलेशन भगवान के ऊपर रियलिटी में परिणित हुआ कि भगवान श्री नरसिंह देव उसी खंभे से बाहर आए। ये किसके वजह से? प्रहलाद महाराज के निरुद्ध प्योर ट्रांस, जहां प्रहलाद महाराज सब जगह पर भगवान को देख रहे थे। दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू सी कृष्णा इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस क्रिएशन और टू सी दिस वर्ल्ड विद द आईज ऑफ कृष्णा, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर परिभाषा दी कि इस पूरे भौतिक संसार को भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से देखना, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अब ये जो दो मुद्दे आते हैं, एक है दुखालयम अशाश्वतम जो भगवान बोले हैं, और भगवान के भक्त प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है मेरे लिए तो विश्वम पूर्ण सुखाये थे, तो ये विरोधाभास हो गया ना। ये भगवान जो बोले हैं उसके विरुद्ध बोल रहे हैं, विश्वम पूर्ण सुखाये थे, और भगवान बोलते हैं विश्वम पूर्ण दुखाये थे। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्योर ट्रांस, प्योर लव ऑफ अ डिवोटी दैट ही सीज कृष्णा एवरीवेयर। सो फॉर हिम देर इज नथिंग कॉल्ड दुखालयम वर्ल्ड, विश्वम पूर्ण सुखाये थे। तो यदि हमें वो कॉशियस स्टेज से कॉन्शियस स्टेज में आना है, तो कॉशियस स्टेज क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, हां ये जान लेना, और फिर कॉन्शियस स्टेज में विश्वम पूर्ण सुखाये थे, और वो स्टेज शुद्ध अवस्था में हम प्राप्त कर पाएंगे। अब हमारा लास्ट पॉइंट, हाउ टू एक्सेस द मर्सी ऑफ कृष्णा। तो ये हाल ही में राधानाथ महाराज एक अपने संडे फीस्ट कार्यक्रम में एक उदाहरण दे रहे थे, तो बहुत मुझे वो उदाहरण अच्छा लगा, तो मैं उसी मुद्दे को लेते हुए ये लास्ट पॉइंट प्रस्तुत कर रहा हूं। वो कह रहे थे कि हमारा जो मन है वो एक पाइप के समान है, अंग्रेजी में उसे कॉन्ड्यूट भी बोलते हैं। कैसा होना चाहिए? इट शुड बी, माइंड शुड बी लाइक एन अनक्लॉग्ड पाइप। यदि मैं पूछूं कि एक पाइप जो होता है, पाइप क्या करता है? हा? पानी पास कराता है, और कुछ? पाइप क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि यहां पर पानी है और यहां से वहां पानी पहुंचाना है, तो बीच में पाइप की जरूरत पड़ती है ना। तो अच्छा पाइप किसे बोलेंगे? कि उसके अंदर कुछ क्लॉगिंग नहीं होना चाहिए, उसके अंदर वो पूरा खाली होना चाहिए अंदर। तो महाराज ये एग्जाम्पल दे रहे थे, व्हेन वी से वी आर नथिंग, इट मींस कृष्णा इज एवरीथिंग। व्हेन वी से वी आर नथिंग, साइमल्टेनियसली इट मींस कृष्णा इज एवरीथिंग। सो आई एम नथिंग लाइक द पाइप हैज नथिंग इन इट, सो दैट एवरीथिंग ऑफ द वॉटर कैन फ्लो। वेरी डीप पॉइंट ही वॉज मेकिंग, कि मैं एक ऐसा पाइप बनना चाहूंगा कि जिसके अंदर कुछ नहीं, हालांकि मेरे अंदर कुछ नहीं, क्यों? ताकि भगवान की कृपा फ्रीली फ्लो हो सके उसके अंदर। आई वॉन्ट टू बी नथिंग सो दैट कृष्णा एवरीथिंग कैन बी फ्लो ऑन थ्रू माई नथिंग, लाइक द पाइप। द क्वालिटी ऑफ अ पाइप इज इट शुड हैव नथिंग इन बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। समझ में आ रहा है? सो अवर माइंड टू बिकम कॉन्शियस शुड बी लाइक दैट। अब कई बार नल चालू कर दो, होता है ना, एक बूंद गिरती है, टप टप, जैसे यहां पे दिख रहा है। तो कई बार हमारी नल दिखने में बहुत अच्छी है, एकदम चमकीली नल, पूरी फुल खोल रखी है, लेकिन पानी एक एक बूंद गिर रहा है या आ ही नहीं रहा है पानी, किसके वजह से? हमारे अनर्थ, बीच बीच में हमारे अनर्थ। तो अब यदि वो पाइप के बीच में कोई पत्थर कंकड़ डाले या हीरा डाले, दोनों कर क्या रहे? फ्लो को रोक रहे। तो कई बार हमें लगता है कि उसका जो पाइप क्लॉग है उसके जैसे मेरा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर हीरे हैं, उसके अंदर तो पत्थर है। तो हमको लगता है हमारे अनर्थ उसके जैसे नहीं है। वेदर इट इज डायमंड और वेदर इट इज पेबल्स, इट इज क्लॉगिंग। तो चाहे हमारे पास बहुत हुनर हो, स्किल्स हो, टैलेंट हो, वो हीरे के समान, परंतु यदि भगवान की कृपा को नहीं वो अनुमति दे रहा है फ्लो होने के लिए, सो ऑल दो स्किल्स एंड टैलेंट्स इन अवर भक्ति आर यूजलेस, दे आर क्लॉगिंग द पाइप। इवन दैट इज एन अनर्थ, वेदर इट इज अ पेबल और अ डायमंड, इट शुड बी रिमूव्ड, नथिंग। परंतु एक स्थिति हमारी ऐसी आती है, ये स्थिति कि थोड़ा फ्लो भी हो रहा है, थोड़ा बाहर भी निकल रहा है और पट्टी भी बांधी है, परंतु पट्टी से भी निकल रहा है बाहर। तो ये स्थिति में अधिकांश हम लोग होंगे, स्ट्रगल, संघर्ष, जिसमें थोड़ी थोड़ी कृपा भी बह रही है पाइप के थ्रू और पाइप के बाहर भी, परंतु कई बार हमारी पट्टी ऐसी होती है। तो हमें देखना चाहिए कि हम वो लीकेज को बराबर बंद कर रहे हैं कि नहीं। आर वी प्रॉपरली टेकिंग केयर ऑफ द लीकेज? इफ इट इज डन लाइक दिस इन अ मिजरेबल वे, देन द मर्सी इज ऑल्सो फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप। सो देयरफॉर रेगुलर रिपेयर वर्क, वी हैव टू बिकम प्लंबर्स इफ यू वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय प्रलंबासुर। प्लंबर्स, वी हैव टू बिकम ग्रेट प्लंबर्स। क्या मतलब है? कि जैसे हर समय उसको टाइट करके रखो, किसको? वो जो भी उसके कनेक्टर्स हैं उनको टाइट करके रखना। तो रेगुलर स्ट्रिक्ट साधना, 16 राउंड्स चैंटिंग, प्रभुपाद बोले। प्रभुपाद को 1972 में बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पूछा, प्रभुपाद व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ गुड बुक डिस्ट्रीब्यूशन? 1972 प्रभुपाद सेड टू चैंट 16 राउंड्स इन वन सिटिंग। 1977 सेम बुक पार्टी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, आज द सेम क्वेश्चन, प्रभुपाद व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ गुड बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सक्सेसफुल बुक डिस्ट्रीब्यूशन? प्रभुपाद अगेन सेड द सेम थिंग, चैंटिंग 16 राउंड्स वन गो इन वन सिटिंग। सो दिस इज हाउ वी टाइटन द स्क्रू और दोज कनेक्टर्स, सो दैट देयर इज नो। और हम लोग ये अनुभव करते हैं, जिस दिन भी हमारी माला ठीक से नहीं हुई, तुरंत हमको उस दिन अनुभव हो जाता है कि लीकेज हो गया पाइप में, है ना, कृपा इधर उधर बह गई। तो करना क्या है? वो पिछला जो फोटो था, फिर से दिखाया, ऐसा रिपेयर वर्क नहीं करना है। कई बार हमारा रिपेयर वर्क ऐसा रहता है कि वो लीकेज रोकना चाहते हैं, इंटेंशन अच्छा है कि लीकेज रोकना है मेरी भक्ति का, लेकिन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं लीकेज रोकने के लिए? एक कोई फटा पुराना कपड़ा, क्योंकि भगवान की कृपा बहुत पावरफुल है, वो फोर्स बहुत है, वो पाइप में जो फोर्स जा रहा है वो बहुत है, ये ऐसे छोटे मोटे कपड़े से कुछ नहीं होने वाला। उसको हमें इस प्रकार से टाइट करके रखना है हमारे इसको। और फिर यदि स्ट्रिक्ट रेगुलर साधना, मतलब 16 माला जप, 4 नियम और भक्तों का संग, ये तीन चीज हैं जो हमारे नट्स को टाइट करके रखेंगे। और फिर होगा क्या? भगवान की कृपा इस प्रकार से बहेगी, न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी ये कृपा, जैसे कि एक झरना बहता है, उसकी कोई उसमें कोई काउंट नहीं कर सकता कितना वॉल्यूम है वाटर का, तो भगवान की कृपा भी उस प्रकार से हमारे इसमें बहती रहेगी। और जब ये सब का हम पालन करेंगे, तो जैसे भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ये आशीर्वाद देते थे जो भी उनको मिलने आता था, कृष्णे मतिर अस्तु, अर्थात मे यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। तो यही हमारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, दैट एट द एंड ऑफ ऑल ऑफ अवर वट एवर स्ट्रगल्स बींग कॉन्शियस, वी हैव टू बी कृष्ण मती, दैट इज द ब्लेसिंग्स एंड द मर्सी ऑफ द ग्रेट सोल्स। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्ण कृष्ण। और आर देयर एनी अनाउंसमेंट्स टू मेक? कोई अनाउंसमेंट है? क्वेश्चन? अच्छा, कॉन्शियस ऑफ बीइंग कॉशियस एंड कॉशियस ऑफ बीइंग कॉन्शियस, विच मीन्स हमें सावधान रहना है, माया से बचना है अपने आप, उसके लिए कॉन्शियस रहना चाहिए। तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड वी शुड बी वेरी कॉशियस फॉर द पॉजिटिव थिंग्स, विच मीन्स इन वन सेंस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देर इज नो नेगेटिव इफ यू टेक बोथ इन द रिवर्स ऑर्डर ऑल्सो, ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ इन रिवर्स ऑर्डर, कॉशियस ऑफ बींग कॉन्शियस एंड कॉन्शियस ऑफ बींग कॉशियस। और कोई प्रश्न? तो ये हम हर महीना इस प्रकार के कुछ मुद्दे लेंगे, इसलिए इसको हमने नाम दिया दी फेस्टिवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम सब परिवर्तित होके इस टेंपल हॉल से बाहर निकले, इसलिए इसका नाम है परिवर्तन, कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आना चाहिए, यही हमारा एकमेव उद्देश्य है। हरे कृष्णा।